Dai.
Prego. Prego. জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, বলব গিরিবর ধারী, জয় গোপী জন বলব গিরিবর ধারী, সদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, 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 তীর রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
सिद्धांत सरस्वत ठाकुर महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयाद्मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम कैंटो 9 अध्याय 11 श्लोक 17 पढ़ेंगे। श्री पुंस प्रसंग श्रीपुंस प्रसंग सर्वत्र त्रासम् आहो सर्वत्र त्रासम् आहो अपि शरणं किमुत अपि शरणं किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसा ग्राम्यस्य गृहचेतसा श्रीपुत्र प्रसंग एतदा सर्वत्र त्रासम् आहो अपि शरणं किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसा श्रीपुत्र श्रीपुंस प्रसंग एतदा सर्वत्र त्रासम् आहो अपि शरणं किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसा। बोलिए। और कोई श्री पुत्र प्रसंग एतद सर्वत्र त्रासम् आहो अपि शरणं किमुत ग्राम्यदेव। श्रीपुत्र प्रसंग एतद सर्वत्र त्रासम् आहो अपि शरणं किमुत ग्रामस्य गृहचेतसा। शब्दार्थ इस श्लोक कैसे हैं बोलिए। श्रीपुंग प्रसंग पति तथा पति तथा पत्नी के मध्य आकर्षण एतादृक इस प्रकार का सर्वत्र सभी जगह त्रासम आहो भय का कारण अपि भी ईश्वरणाम नियंताओं का किम उत क्या कहा जाए ग्राम्यस्य इस जगत के सामान्य मनुष्यों का गृहचेतस गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त। ट्रांसलेशन एंड पर्पट है डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन। सर्वत्र स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण पाया जाता है जिससे हर व्यक्ति भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती है और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा आनंद के अनुभव का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है तो वो बंधन का कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसी वियोगों की भावनाएं दिव्य आनंद के कारण रूप है। वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है किंतु ये दिव्य आनंद के समान गुण वाली है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सगण ललिता शिविशाखानुसंस्थं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम भाई जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो विश्व पर राज करना ये जो विषय चल रही है तो बड़े ही हमारे लिए खास करके जो राजनीतिज्ञ नेता है, खास करके जो लोग पोजीशन में जो लोग अधिकारी व्यक्ति है और लोगों के लिए एक प्रकार का सतर्कमूलक सावधानी चेतावनी प्रदान करा किया जाता है। तो कई श्लोकों में कल जो चर्चा हुई थी भगवान के ये चरित्र के ऊपर, तो भगवान सीता जी के बिना कल के बातचीत में हमें सुन रहे थे कि भगवान बड़े दुखी हो गए। और जब देवी सीता पृथ्वी के भीतर समा जाती है तो भगवान बड़े खिन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री राम सीता के वियोग में इस प्रकार हमें अपने को एक बहुत ही संसारिक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर अपने को प्रस्तुत करते हैं। एक संसारी व्यक्ति जिस प्रकार भौतिक संबंध को खोने के बाद इस प्रकार मोहित हो जाता है, इस प्रकार मोह में भगवान श्री राम सीता के वियोग में वे दुखी हो जाते हैं, ये आज के विषय में दिख पड़ती है। तब भगवान जब सीता देवी पृथ्वी की तरह समा जाते हैं तब भगवान श्री राम इतने अधीर हो जाते हैं इतने अधीर हो जाते हैं ऐसे कि पहाड़ को पूछते हैं, पहाड़ तुम देखे हो, सीता को देखे हो, पर्वत को पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, हाँ। और जब कोई इसका जवाब नहीं देते हैं तो अपने हाथ में धनु और बाण उठा लेते हैं और ऐसे कह देते हैं जब सीता मेरे साथ नहीं रहा तो मैं सारा संसार को विनाश कर दूंगा। लक्ष्मण वहां पर भगवान श्री राम को रोक लेते हैं, एक व्यक्ति गलती किया और उसके चलते हुए आप सारा संसार को क्यों विनाश करना चाहते हो। वास्तविक दिखा जाए तो सीता देवी कोई असाधारण नहीं है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और यहाँ पर ये बात भी दिख जाती है, मिलन रस की अपेक्षा विरह जो विरह की जो रस है वो बड़े उत्कृष्ट है। श्री राधा गिरिधर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो मिलन की जो रस है उससे हाँ विरह की जो रस है वो उत्कृष्ट है, यहाँ पर ये बात दिख पड़ती है। और ये भी दिखती है भगवान श्री राम और सीता के भीतर जो प्रेम की संबंध है ये कोई साधारण भौतिक नहीं है, पूर्ण रूप से दिव्य है। और ये भौतिक जगत में जो पुरुष स्त्री के बीच जो प्रेम की संबंध है, जो संबंध है, रिश्ता है, ये एकदम उल्टा है। तो आज के श्लोकों के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने ये भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष के संबंध किस प्रकार खतरनाक है, किस प्रकार का खतरा है, ये बात को ये कहना चाहते हैं। आज की जो स्त्रियां हैं भी सड़क के ऊपर कामुक होकर भी सड़क के ऊपर घूमती रहती है, हर काम की वशवर्ती होकर वो जिस पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लेती है। पहले समय में पिता माता जो होते थे वो अपने पुत्र पुत्री के लिए पात्र चुनते थे। जिस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पुत्री जयभूति के लिए कुटीर निवासी जो अधर्म मुनि थे चुने थे, तो ये एक उपयुक्त सभ्यता, ये सभ्यता है। वर्तमान इस प्रकार का निर्लज प्रणाली हो गया तो कुछ जैसे वर्तमान के समय में जिस प्रकार पुरुष स्त्री के बीच जो संबंध है एक प्रकार कुत्ते बिल्ली के जैसे संबंध बन गया। तो इस प्रकार का दिखी जाती है। तो अर्थ ये है, संहिता के अनुसार ये भी बात बताया जाता है, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई एक स्त्री पति के संरक्षण में नहीं होती है तो निश्चित रूप से उनको अवश्य उनके पुत्र के संरक्षण में होनी चाहिए। क्यों? इसलिए स्त्री स्वाधीनता का सदुपयोग नहीं कर पाती। स्वाधीनता का कैसे सदुपयोग करना है स्त्री को ये ज्ञान नहीं है। और जब कोई स्त्री स्वतंत्र होना चाहती है तो निश्चित रूप से वो दुखी हो जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। और आप दृष्टि देंगे पाश्चात्य देश में ये स्वतंत्रता का उपयोग करने के कारण कई स्त्रियां दुखी है। तो ये भौतिक संसार में सुख दी जाती है, भौतिक सुखों में से सर्वश्रेष्ठ सुख है पुरुष के मित्र जो एक प्रकार का सुख है, ये भौतिक संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख है। और इसी के आकर्षण में सारा संसार चलती है। पुरुष स्त्री के भीतर जो एक संबंध है, यही पुरुष स्त्री के भीतर जो आकर्षण है, यही आकर्षण में किसी के आकर्षण, यही आकर्षण के द्वारा ये सारा संसार बसी है। सारा संसार चलायमान है, इसके पीछे रहस्य ये पुरुष स्त्री के भीतर जो भौतिक संबंध है। तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति के भीतर यदि ये आकर्षण नहीं रहेगा वो काम नहीं कर सकता। भौतिकवादी व्यक्ति के भौतिकवादी पुरुष के भीतर यदि स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकता। आजकल के जो बहुत बड़े बड़े कल कारखाना है, कंपनी है, बहुत बड़े बड़े काम होती है, उसके बीच में ये आकर्षण, इसी के वजह से ये बड़े बड़े काम होती है। एक बार ये संबंध में ये रामायण का प्रसंग भी है, और इस संबंध में जुड़े हुए देवी सीता एक बार एक मादा और नर पुरुष और स्त्री, जो मादा और नर जो पुरुष और स्त्री थे तो उनके भीतर जो संबंध है ये संबंध प्रेम की संबंध है, भक्ति संबंध है। तो वो संबंध की बाधा देने के कारण किस प्रकार देवी सीता के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा एक दुख उठाना पड़ा, दुख आया। मैं एक छोटी सी कथा के द्वारा बताऊंगा, ये पद्म पुराण में बताया जाता है। और एक बार सीता देवी अपने मित्रों के साथ तो ऐसे उद्यान में खेल रही थी, तो अचानक उनका नजर गई, लेकिन पहले क्लास में लास्ट क्लास में मैं ये कथा को पूरा नहीं कर पाया था तो छोड़ दिया था, समय हुआ था। तो एक बार देवी सीता जी अपने मित्रों के साथ उद्यान में खेल रही थी, ऐसे घूम रही थी। अचानक उनकी नजर पहाड़ की चोटी पर एक पुरुष और स्त्री पक्षी के ऊपर गई। तो गई तो वो अपने मित्रों को सहेलियों को बोली कि जाओ ये जो पर्वत की चोटी के ऊपर दोनों पक्षी बैठे हैं तो उनको पकड़ ला करके मुझे दो। तो सीता जी के कहने से उनके मित्रों लोग हैं जाकर छिपके चुके गए और दोनों पक्षियों को पकड़ ले ला करके सीता के हवाले कर दिए, सीता के हाथ में दे दिए। तो उस पक्षी दोनों जब बैठे थे तो भगवान राम के विषय में, सीता के कीर्ति के विषय में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये बात को जब सुनी देवी सीता तो उनको अपने मित्रों के द्वारा पकड़ लाई। तो उनके हाथ में आ गए दोनों पक्षी तो बड़े प्रेम से सीता देवी पूछे तो आप लोग कौन हो, आप लोग कहाँ से आए हो? अरे ये राम के विषय में आप लोग को कैसे पता हुआ? ये राम कौन है, ये सीता कौन है, तो ये विषय में मुझे बताओ, आप लोग को कैसे ये बात पता चला मुझे बताओ। तो सीता जी के प्रश्न से ये दोनों पंखी कहें कि हम लोग वाल्मीकि मुनि के महर्षि के आश्रम के निवासी है, हम वहीं रहते हैं। जब वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को रामायण के पद की अभ्यास कराते हैं तो वो सुन सुन करके हमें भी याद हो गई है। तो ये कह देने से तो सीता देवी और दोनों पक्षियों को अपने राजमहल में रखना चाहिए, जब तक भगवान श्री राम नहीं आके मुझे स्वीकार नहीं करते तब तक आप दोनों मेरे महल के भीतर रहो। ये बात सुनकर के दोनों पक्षी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं देखो हम वन में बिछड़ने वाले वन पक्षी है, जंगल में रहने वाले पक्षी है, आपके राजमहल के सुख हमें आनंद नहीं दे सकता, तो कृपा करके मुझे छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो। और ये अवसर पर ये पुरुष पक्षी जो था देवी सीता को कहा कि देखो ये जो मेरा पत्नी है वो गर्भवती है तो उनको छोड़ दो, हाँ हम जाते हैं फिर बच्चे उत्पन्न करके फिर वापस आपके पास आ जाएंगे। लेकिन देवी सीता उनको छोड़े नहीं और सीता पुरुष स्त्री पक्षी जो थी हाँ सीता देवी को कहने लगी देखो सीता हट्टी मत बनो मुझे छोड़ दो, हाँ लेकिन सीता देवी नहीं सुने और कहने लगी आपको मैं रखूंगी लेकिन ये पुरुष पक्षी जो वो जा सकता है, उनके पास मेरा कुछ काम नहीं है। पुरुष पक्षी को भगा दिए और स्त्री पक्षी को अपने महल के भीतर रख दिए। जब पुरुष पक्षी स्त्री पक्षी से अलग हो जाता है तो स्त्री पक्षी पुरुष पक्षी उपयोग में छटपट होकर के तुरंत अपने प्राण को त्यागने के लिए जाती है और प्राण त्यागने के पहले तो वो साप दे देती है देवी सीता को, देखो हाँ जिस प्रकार अभी पति के वियोग में मैं शरीर छोड़ती हूँ उसी प्रकार मैं साप देती हूँ, मेरा साप से आपको भी कि आपका पति के वियोग में बहुत बड़ा भारी दुख उठाना पड़ेगा। ऐसे वो स्त्री पक्षी सीता को देवी सीता को साप देकर तो अपने प्राण छोड़ दी और तुरंत राम की कीर्ति देवी सीता को सामने देखकर प्राण छोड़ गई थी। तो वैकुंठ से तुरंत एक विमान आया और चतुर्भुज एक सारूप्य मूर्ति बन करके वैकुंठ चला गया। जैसे पक्षी की मृत्यु जाती है तुरंत जो पशु पुरुष पक्षी था तुरंत आकर के वहां पे पहुंचता है और जब देखती है उनसे देखता है उनका पत्नी का मृत्यु हो गई है तुरंत वो भी साप दे दिया है कि देखो हाँ हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा हमारा दाम्पत्य जीवन में हमारे प्रेम के जीवन में आप इतने बड़े बाधा एक बहुत बड़ा रुकावट उत्पन्न की तो मैं भी साप देता हूँ तो मेरा बाकी के उद्वेग से आपका पति आपको त्याग देगा। और वो जब कह रहा था बड़े गुस्से से कह रहा था तमोगुण में क्रोधित होकर के कह रहा था, जेहेतु क्रोधित होकर के वो पुरुष पक्षी कह रहा था तो उनको अयोध्या में जन्म लेना पड़ा लेकिन जैसे एक धोपी एक नीच जोनी में नीच परिवार में उनको जन्म लेना पड़ा और ये धोपी के उद्वेग से भगवान श्री राम अपने पत्नी को त्याग देते हैं। तो हमें ये बात को हमें देखते हैं और श्रीमद भागवत में भी यही बात को कहा जाता है किं विद्याया क्यं किं तपसा क्यं किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विवेकेन मौनेन स्त्री भी अस्य मनोहृतम्। जो पुरुष का मन स्त्री में है तो फिर उनका विद्या इनका त्याग उनका तपस्या और उनका संन्यास उनका शास्त्र श्रवण, उनका निर्जन वास, उनका मौन व्रत, ये सब फिर क्या काम। जो पुरुष का मन को श्री हल्ली है तेरे, उनका ये सारे साधन उनका काम कुछ काम का नहीं है। ये बात कुछ श्रीमद भागवतम के द्वारा कहा जाता है। और ये भौतिक जगत देखा जाए तो क्या है, क्या शास्त्र में बताया जाता है, श्री पुंस क्रिया मिथुनी भावम एतम, ये भौत ये है ये भौतिक जगत। ये लोक में भौतिक जगत में साधारण से बद्ध जीव की तरह पाई जाती है कि हिंसन करना और मांस खाना, मछली खाना और नशा करना साधारण से बद्ध जीवों के भीतर साधारण खूबी है। इस साधारण उनके भीतर कमजोरी दिखाई पड़ती है, दुर्बलता ये बद्ध जीव के भीतर पाई जाती है। हाँ, लेकिन ये शास्त्र का कोई आदेश नहीं है, ये सब काम करने के लिए शास्त्र आदेश नहीं देता है। लेकिन बद्ध जीवों के भीतर एक प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति का निवृत्ति करने के लिए, प्रवृत्ति मतलब इंद्रिय तोषण, इंद्रिय तृप्ति, ये कुप्रवृत्ति का कुप्रवृत्ति से एक बद्ध जीवों को निवृत्त करने के लिए, ये गलत प्रवृत्ति से एक बद्ध जीव को निवृत्त करने के लिए मतलब आध्यात्मिक मार्ग में और ले आने के लिए स्त्री संग और यज्ञ विशेष मांसभक्षण और सुरापान कर सकते हैं। ऐसा शास्त्र का कहना नहीं है, हुक्म नहीं, आदेश नहीं है शास्त्र का स्त्री संग करना, मांस भक्षण करना, नशापान करना, ये शास्त्र का आदेश नहीं है। लेकिन जो बद्ध जीव के द्वारा होता नहीं है, वेदो विधि का आदेश को पालन करना होता नहीं है, तो वेदो मर्यादा को लांघेगा, तोड़ेगा, तो वेदो को असम्मान करने की अपेक्षा शास्त्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, विभाव के द्वारा ही कार्य करने के लिए बद्ध जीवों को बताया जाता है, ये कहा जाता है। और यदि गृहस्थ जीवन में ये प्रवृत्ति मार्ग को मार्ग के लिए कुछ परिमाण में उत्साह प्रश्रय दिया जाता है, फिर भी ये व्यवस्था में इंद्री वेदों की विधि विधान इस प्रकार का पीट किया गया है, जो ये वेद विधान को पालन करते हुए एक गृहस्थ अंतत गत्वा वो निवृत्ति मार्ग में मतलब आध्यात्मिक मार्ग में पहुंचे। गृहस्थ जीवन करना है, नहीं, गृहस्थ जीवन में भी वेदों की विधि विधान इस प्रकार का लागू किया गया है, ये वेदों के विधि विधान को पालन करते हुए प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए अंतत्वा एक गृहस्थ निवृत्ति मार्ग में पहुंचे, जीवन का जो परमार्थी लाभ उनको समझ लें। और ये संसार में बद्ध जी के पुत्र साधारण दिखा जाती है स्त्री संग करना, लेकिन वेदों में कहा जाता है विवाह है स्त्री संग, जो विवाह नहीं करता वो स्त्री संग नहीं कर सकता। और ये बात को भी चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत प्रदारेषु, स्त्रियों को अपने पत्नी के व्यतीत और जितने सारे हैं स्त्रियों को माँ के जैसे सम्मान, माँ के जैसे दृष्टि में दिखा जाना चाहिए। और यही चालाकी, ये जो चतुरपण चतुराई को प्रभुपाद जी भी है इस संस्था में लागू कर दिए। प्रभु जी माता जी, प्रभु जी लोग स्त्रियों को माता जी के रूप में संबोधन करेंगे। कोई भी कितना बड़ी कामुक व्यक्ति भी हो जाए ना, अपने माँ के प्रति इस प्रकार का कामुक नहीं हो सकता। हाँ, अपने माँ के प्रति इस प्रकार का कामासुर नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कन संस्था में प्रभु जियों को कहा है कि स्त्रियों को माता जी संबोधन करने के लिए। ये बात को प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। और वेदों में ये भी बताया जाता है व्यवाह प्रजया नरते, स्त्री संग करना है केवल कृष्ण भावना मृत संतान उत्पन्न करने के। भौतिक रत्न में आज के श्लोकों के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने एक पुरुष के लिए घातक चीज है स्त्री के प्रति आकर्षित होना। अब आध्यात्मिक मार्ग कई घातक चीज है, एक पुरुष एक स्त्री के प्रति जब आकर्षित होती है तो कृष्ण आसक्ति किसमें बैठता है। अब जब एक स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त होता है, ये दोनों के प्रति लागू होता है, एक दूसरे के प्रति जब आसक्त होते हैं, आसक्ति जब बीच के व्यक्ति के प्रति होता है तो पुरुष और स्त्री का जीवन सफल होती है। लेकिन ये चमड़ी के प्रति जब हम आसक्त होते हैं, पुरुष स्त्री के चमड़ी के प्रति और स्त्री पुरुष के शरीर के प्रति जब आसक्त होते हैं, फिर हाँ ये बच्ची बहुत बड़ा डेंजरस, बहुत बड़ा खतरनाक बन जाती है। हाँ, तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया जाए, कहा जाता है कि केवल कृष्ण भावनामृत संतान को उत्पन्न करने के लिए नहीं, और ये और कुछ किसके लिए नहीं। लेकिन आज के समय में देखा जाता है एक पुरुष स्त्री को अपने भोग की आइटम मना लिया है, मान लिया है, भोग की पदार्थ के रूप में सोच लिया। एक पुरुष के मन में स्त्री जो है वे भोग की वस्तु के रूप में बसी हुई है। लेकिन देखा जाए गृहस्थाश्रम में जो स्त्री है उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। हाँ, पत्नी, धर्म पत्नी, पत्नी इसके लिए उनके सहायता से धर्म का साधन किया जाए, उनका मदद लेकर के एक गृहस्थ एक पुरुष पत्नी का सहायता लेकर के धर्म साधन करे, परमार्थिक जीवन में आगे हो तो इसके लिए धर्म पत्नी का स्वीकार करना है, पत्नी का स्वीकार करना है। लेकिन जब पुरुष और स्त्री के विषय में स्त्री के बीच से धर्म को निकाला दिया जाता है, वो दोनों को दोनों नरक चले जाते हैं, दोनों को दोनों पशु जोनी में चले जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। और वैदिक धारा में एक नारी शब्द का अर्थ है बुद्धि, वेदों में ऐसे नारी शब्द का अर्थ बुद्धि, और जो एक सती स्त्री होती है, एक सती स्त्री का जो बुद्धि होती है वो विशुद्ध होती है, और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा हमें भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन इसके नारी शब्द का अर्थ बुद्धि और सती का अर्थ है विशुद्ध बुद्धि, और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। लेकिन जैसे कोई पुरुष स्त्री को भोग रूप में सोचता है तो फिर वो नारी वो पुरुष को काम में प्रवृत्त करा देता है, स्त्री को भोग समझता है तो ऐसे स्त्री का बुद्धि दूषित हो जाती है, और दूषित बुद्धि का जो स्त्री होती है वो पुरुष को काम में प्रवृत्त करा देती है। और एक है नारी शब्द का अर्थ है प्रमदा। तो प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायिनी और प्रेरणादायिनी और प्रमत्वकारिणी। नारी शब्द का अर्थ है प्रमदा। प्रमदा का तात्पर्य यह है कि एक प्रेरणादायिनी और प्रमत्वकारिणी, एक नारी सजार सकती भी है और उजाड़ भी सकती है, प्रेरणा प्रदान कर सकती है आध्यात्म मार्ग में जाने के लिए, और प्रमत्वकारिणी जो धन रख सकती है। और प्रमदा शब्द का अर्थ है अग्नि। हाँ, नारी को भी एक अग्नि के रूप में कंपेयर किया, तुलना किया गया है, जैसे रावण सीता जी के प्रति असम्मान करने के कारण उनका सोने का लंका जल के भस्म हो गया। जो पुरुष नारी को सम्मान नहीं देता वो रावण के जैसे असुर स्वभाव के होता है। और ऐसे भी शास्त्र में बताया जाता है स्त्रियों को और बच्चों को और बुजुर्ग व्यक्तियों को अवश्य सम्मान करना, ये लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को बच्चों को और बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए। यही अपमान करने के कारण कुरुवंश की जितना सारे स्त्रियां निवस्त्र होकर के सभा में आ गई थी। द्रौपदी के प्रति जैसे ही कौरव लोग अपमानित किए, द्रौपदी को अपमान किया तो तुरंत उनके जो कौरव जितना स्त्रियां थी तो निवस्त्र होकर के बीच सभा में आकर के पहुंच गई। अचानक रानी हंसपुर में आग लग गई थी। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, और श्रीपाद शंकराचार्य भी ये बात को बताते हैं, एक नारी का जो सौंदर्य क्या है, क्या नारी का जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो है क्या, ये बात को बताते हुए एक छोटी सी कथा कहते हैं शंकराचार्य जी। कई बार एक पुरुष एक नारी के प्रति आकर्षित हो गया, और ये जो स्त्री थी बड़े चालाक थी, और वो पुरुष को उनका मिलने का जो डेट है वो फिक्स कर दी, आप ये दिन में आकर के मुझे मिलो, और इस प्रकार का दिन बताकर तो उसके पहले दिन उस स्त्री ने क्या कि ना जो मेडिसिन खाने से लो हो ऐसे ज्यादा टॉयलेट हो ऐसे वो दवाई खा ली, और दवाई खा करके दिन भर वो टॉयलेट गए, और दिन भर टॉयलेट जाकर के उनका चेहरा एकदम खराब हो गई थी। तो इस प्रकार अवस्था थी, तो पुरुष गया वो स्त्री को मिलने के लिए, और जब गया अरे हेलो, आप वो हो ना जिसको मैं मिलने के लिए डेढ़ दिन आया था? तो स्त्री ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आपका सौंदर्य कहाँ गया? आप तो उस दिन इतने सुंदर लग रहे थे, लेकिन आपका इतना वो दिन का सौंदर्य सुंदरता कहाँ कहाँ चली गई? तो स्त्री ने कहने लगी पुरुष को, मैं मेरा सौंदर्य को अलग करके रखा हूँ। तो पुरुष बड़ा आश्चर्य हो गया, तो सौंदर्य को कैसे अलग करके रखा जाता है? तो उसकी कहने लगी, आप यकीन नहीं हो रहा है क्या? चलो मैं मेरा सौंदर्य को किस प्रकार का अलग करके रखा हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह कहकर के पुरुष को लेकर के गई और जाकर के दिखाई, अगर बकेट में टट्टी पिसाब को भर करके रखा है। स्त्री एक बकेट में मलमूत्र को भर करके रखी। तो वो पुरुष बोला, आपका सौंदर्य कहाँ है? ये इधर उधर नजर फिरा रहा था तो पुरुष तो पूछ रहा था, आपका सौंदर्य कहाँ है? तो उसकी कहना, ये बकेट में जो देख रहे हो ना, यही मेरा सौंदर्य है। तो पुरुष तुरंत उस स्त्री के प्रति विरक्त हो गया। तो कहने का अर्थ है, हाँ एक पुरुष जो आकर्षित होता है वो भले नरक में जाए, लेकिन स्त्री सुख को और एक स्त्री पुरुष सुख को छोड़ने, भले वो नरक जाना पड़े, लेकिन ये दोनों से एक प्रकार का सुख लेना चाहते हैं, ये सुख को त्याग नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। हाँ, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में संन्यास लीला के समय रह रहे थे, तो उसके पास चैतन्य महाप्रभु के पास रोज एक बहुत सुंदर बालक आया करता था। और ये बालक इतने सुंदर था वो और किसी के पास नहीं जाता था, सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाता था। और चैतन्य महाप्रभु भी वो बालक को बड़े प्रेम करते थे, बात करते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब ये बालक को अति बहुत प्रेम करते थे, गदाधर पंडित जी को वो बात अच्छा नहीं लगता था, वो सहन नहीं कर पाते, ये छोटा सा बालक को महाप्रभु इतने प्रेम क्यों कर रहे हैं? ये बात को देखकर गदाधर पंडित जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और सहन नहीं कर पा रहे थे। अचानक एक दिन कह पड़े, हाँ प्रभु, आप ये बालक को इतने प्रेम क्यों कर रहे हो? और आप जो बालक को इतने प्रेम कर रहे हो, जानते हो कौन है? एक है, हाँ विधवा का पुत्र है, और ये विधवा स्त्री जो है हाँ तरुणी है। जब लोग सुनेंगे आप एक तरुणी विधवा का पुत्र के प्रति इतने आसक्त हो, इतने प्रेम कर रहे हो, तो लोग आपके विषय में निश्चित रूप से कानफूसी करेंगे। तो कृपा करके आप इस बालक के प्रति ये जो प्रेम है, स्नेह है, उनको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखा जाता है चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जी के द्वारा भी जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में चल दिए हैं, जो लोग भक्त है, किस प्रकार स्त्री आध्यात्मिक भक्ति के जीवन में और एक स्त्री के प्रति पुरुष भक्ति के जीवन किस प्रकार घातक चीज है, ये गदाधर पंडित जी हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी ये बात को हम भक्त के समाज को कहें, जो लोग वैरागी के जीवन अपनाने के बाद स्त्रियों के साथ ज्यादा मिलता जुलता रहता है, घुल मिल करके बात करता है कि उनके करीब रहता है, तो ऐसे भक्तों का, ऐसे वैरागियों का, भले वैरागी का जीवन ले रखा है, लेकिन ऐसे वैरागियों का मुंह में देखना नहीं चाहता। वैरागी हया करे प्रकृति संभाषण जिते न पारी अमित आहार बदन। इतने महाप्रभु कह दिए कि जो वैरागी के जीवन लेने के बाद जो स्त्रियों के साथ इतने करीब जाना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे वैरागियों का मुंह तक मैं देखना नहीं चाहता हूँ, ये भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो फिर इस भौतिक संसार में श्रील सुखदेव गोस्वामी स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध है, हाँ तब तक हमारे लिए विपत्ति है जब तक दोनों के बीच में कृष्ण नहीं आते। हर बातों में बीच में जब तक कृष्ण नहीं होते हैं, तो वह बात हमारे लिए खतरा बन जाता है, विपत्ति का कारण बन जाता है। तो यही बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि वो जब कल के श्लोक में हम देखे भगवान श्री राम सीता के प्रति वियोग में किस प्रकार का एक सांसारिक व्यक्ति के मनुष्य के जैसे रो रहे हैं, यदि वो भगवान का ये भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया का कोई लेना देना नहीं रहता है, जिस प्रकार ये क्या नाम सत्राजित राजा का मृत्यु हो जाता है तो उनका मृत्यु मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण रो पड़ते हैं, सतुभामा को दिखाते हैं, देखो आपका पिता के प्रति मेरा कितना लगाव है, आपका पिता के प्रति मेरा कितना प्रेम है। अब वो दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को दिखाने के लिए एक संसारी मनुष्य जिससे रो पड़ते हैं, उसी प्रकार तो श्री सुखदेव गोस्वामी सारा संसार को एक प्रकार से सतर्क कर देते हैं। यदि भगवान राम के आंखों में आंसू है देवी सीता के वियोग में, लेकिन ये साधारण आंसू नहीं है, ये पूर्ण रूप से दिव्य है, ये पूर्ण चिन्मय है। ये भौतिक जगत एकदम उल्टा है, आध्यात्मिक जगत का जो वातावरण है, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कार्य होती है, ये भौतिक जगत का उसका एकदम उल्टा प्रतिबिंब है, एकदम उल्टा है। तो भौतिक जगत के स्त्री पुरुष का जिस प्रकार का वियोग से दुख होती है, एक प्रकार का कष्ट होती है, तो भौतिक संसारी मनुष्य ऐसा नहीं समझना चाहिए ये तो हमारी जैसे है। ऐसा पार्वती जी भी भगवान राम श्री राम जब जाने के बाद इस प्रकार का एक पागल हो गए थे, तो ये बात उनका पागलपन को देख करके देवी पार्वती जी महादेव जी को कहे, अरे आप उनको क्या प्रणाम कर रहे हो, ये ऐसे साधारण व्यक्ति के अपने पत्नी को खोने के बाद साधारण व्यक्ति की दृष्टि देखो, कोई व्यक्ति पहाड़ को पूछेगा, कोई व्यक्ति पत्थर को पूछेगा, कोई व्यक्ति समुद्र को पूछेगा मेरा पत्नी कहाँ है, इसका पत्नी गुम हो गया है, वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर देगा। हाँ ये देखो, ये पहाड़ को पूछता है, जंतु जानवर को पूछता है, ये तो एक साधारण मनुष्य से और गया गुजरा है, तो आप उनको दंडवत क्या मार रहे हो, उनको दंडवत क्या कर रहे हो, ये किसी साधारण व्यक्ति से और गया गुजरा है। तो वहां पर शिव जी देवी सती जी को आप ही कर रहे हैं, भले हो है, भगवान यहाँ पर नर लीला कर रहे हैं, एक साधारण सांसारिक मनुष्य भले वो कार्य कर रहे हैं लेकिन वो भगवान है। लेकिन भगवान महादेव जी के बातों में देवी सीता जी ना पार्वती जी नहीं आते और परीक्षण लेने के लिए चले जाते हैं, तो परीक्षा में पता चल जाता है ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भी सारा संसार के आम जनता को, सारे संसार भौतिक संसार को एक प्रकार सावधानी करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भगवान राम का सीता के प्रति जो प्रकार का वियोग से दुख दिखा रहे हैं वो, लेकिन वो सांसारिक नहीं है, आप लोगों की भ्रांति नहीं है, तो आप लोग अपने जैसे उनको मान मत लो। तो यहाँ पर एक सावधानी करा रहे हैं कि सीता बनी संसार को प्रदान कर दे रहे हो। तो आगे जा करके श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पुरुष स्त्री का जो संपर्क है इतने प्रबल है ऐसे कि बड़े बड़े व्यक्ति भी उसके चुंगल में आ जाते हैं। अपि ईश्वराणाम किमुतो, अपि ब्रह्मा शिव जैसे व्यक्ति वो लोग भी इसी के भीतरी है, वो लोग भी यही स्त्रियों के यही प्रेम और पुरुष भीतरी है। अपि ईश्वराणाम किमुतो, नियंत्रण के विषय में शिव जी ब्रह्मा के विषय में क्या कहा जाए, जो कि आप लोग हम लोग पीछे सुन कर आए शिव जी किस प्रकार सुने मोहिनी मूर्ति के विषय में, तो भगवान के पास आके थोड़ा सा जीत करने लगे कि मुझे दिखाओ, और औरों को जिस प्रकार दूसरों को जिस प्रकार का आपका ये आकर्षक आपका आकर्षक रूप को दिखाए थे, कृपा करके मुझे आप ये आपका ये सौंदर्य को दिखा दर्शन कराओ। तो भगवान वहां पर उनको वारण करते हैं, नहीं आप ये दृश्य देखने के लिए योग्य नहीं हो। सिद्धि जैसे व्यक्ति उनको भी भगवान वारण करते हैं, आप स्त्रियों का सौंदर्य देखने के योग्य नहीं हो। सिद्धि कौन है, महान वैष्णव है। सिद्धि जैसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण मना करते हैं कि आप स्त्रियों को सौंदर्य को दर्शन करने का आपका आंखों नहीं है, आपका आंखों की इतनी शक्ति नहीं है, आपका आप इतनी योग्य व्यक्ति नहीं हो जो स्त्रियों को सौंदर्य को देखें। लेकिन सिद्धि मानते नहीं है, जीत करते हैं भगवान के पास और भगवान अपने सौंदर्य को प्रदान करते हैं। जैसे जैसे भगवान अपने सौंदर्य को शिव जी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो प्रमत्त एक पागल हो जाते हैं अपने, भले उनके शिव जी की पत्नी कितने सुंदर है, और शिव जी सारे देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। जो देवता लोग शिव जी भगवान की मोहिनी मूर्ति में आकृष्ट नहीं हुए, वो मोहिनी मूर्ति के द्वारा शिव जी पागल हो गए। और कामुक की जैसे कामुक व्यक्ति जिस प्रकार हाँ स्त्री की दौड़ता है तो उसी प्रकार कामुक बन करके शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे थे। और भगवान भी शिव जी को ऐसे रास्ते में घिसट लेके जा रहे थे जहां पर जो रास्ता में साधु संतो लोग बसी हुए थे, साधु संत लोग रह रहे थे, ऐसे रास्ता में होकर भगवान शिव जी को घिसट रहे थे। ये शिक्षा देने के लिए हे साधु संत तुम भी देख लो, आप लोगों के लिए भी एक प्रकार का फर्क कब ये विषय है। भले कितना भी एक संसारिक बद्ध जीव हमारे जैसे जीव, हाँ देखो शिव जी का दशा क्या है, कितने बड़े व्यक्ति है शिव तत्व, हाँ जो कि विष्णु तत्व की बराबर है, तो वो भी उनके दशा क्या है एक स्त्री के उनके आकृष्ट होने के बाद। तो फिर हमारे से बद्ध जीव संसार में रहने वाले मनुष्य का बातें क्या कहा जाए। तो ये बार एक बार की जीता मित्र प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कालिदास जी को सबको ही जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान है, संस्कृत में एकदम बहुत बड़े पंडित है, भोजराज के दरबार में एक रत्न थे उस समय, भोजराज जो थे उनके दरबार में एक रत्न थे कालिदास जी, और बहुत बड़े बड़े अमूल्य निधि वैदिक साहित्य में प्रदान किए हैं, बहुत बड़े बड़े संस्कृत में ग्रंथ रचे हैं। ऐसे विद्वान पंडित व्यक्ति जहाँ पर रह रहे थे तो उनके घर की बगल में एक स्त्री रह रही थी जो झाड़ू पूछा कर रही थी, जो सड़क में झाड़ू मारती थी भुंगीना कहते थे, तो वो माता जी एक रह रही थी तो उनके कुटिया के घर के बगल में, तो ये पंडित जी के कालिदास जी के घर के बगल में एक माता जी स्त्री रह रही थी। रहते रहते हाँ तो उनके प्रति वो आसक्त हो गए, और ऐसा हुआ एक दिन उस स्त्री को लेकर के वहां से वो छू हो गए, गायब हो गए। देखो ज्ञान में कितने पंडित व्यक्ति, कितने बड़े विद्वान व्यक्ति, हाँ जो इंद्रिय रूपी माया के द्वारा, इंद्रिय रूपी जो इंद्रिय है ये माया, ये शरीर माया का है, माया मतलब जो नहीं है, ये शरीर जो मिला है एक दिन नहीं रहेगा, मतलब माया का स्वरूप है। तो इंद्रिय हमारे जो इंद्रियों के भीतर बातें चलती रहती है, और कोई विषय माया के रूप में हमारे सामने तो आना दूर की बात है, हमें जो इंद्रियों मिला है ये इंद्रिय रूपी माया के द्वारा, हमें इंद्रिय रूपी माया के आंधी के सामने हमें कितने बड़े भक्त हो, कितने बड़े विद्वान हो, जैसे हमारे भीतर एक प्रकार का गर्व अहंकार उत्पन्न होती है, तो ये इंद्रिय रूपी आंधी के सामने हमें एक तिनके की भांति बन जाते हैं। भले भक्त होना क्यों, भक्ति के भीतर जैसे एक अहंकार उत्पन्न होती है, इंद्रिय उनका जो इंद्रिय मिला है वे इंद्रिय माया का कार्य करती है। जिस प्रकार कालिदास इतने बड़े विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद भी हाँ इंद्रिय रूपी माया के द्वारा वो अपने ज्ञान को खो बैठे, लेकिन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है, कृष्ण भावनामृत का सहारा लिया है, फिर ये इंद्रिय रूपी आंधी के द्वारा बहने ही जाएगा। लेकिन दुख की बात है वर्तमान समग्र संसार में, ये सारा संसार में कृष्ण भावनामृत की अभाव है। आज के संसार के लोग ये अज्ञान में ग्रस्त है, अज्ञान में पीड़ित है। जब तक हमारे इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत का एक प्रकार का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, जब तक हमारे भौतिक इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, तब तक ये इंद्रिय जो मिली है वो पाप कार्य में निश्चित रूप से लिप्त रहेगा। जब तक इंद्रियों को जब तक हमारा इंद्रिय को कृष्ण भावनामृत पर मोड़ नहीं लिया जाता, तब तक इंद्रिय निश्चित गलत करेगा, पाप कार्य में लिप्त रहेगा। उनको कितना भी पनिशमेंट दो, एक व्यक्ति को कितना भी पनिशमेंट दो, शास्ति दो, जब तक वो इंद्रियों को भगवान के सेवा में कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा जाता, तब तक वो पाप करेगा। देखते हैं ना चोरों को जेल दिया जाता है ना, कितने बड़े 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 दंड दिया जाता है, कितना बड़ा बड़ा पिटाई होती है ना, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो वही गलत करता है, पाप करता है, चोरी करता है, क्योंकि उनको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है। आज सारा संसार का यही दशा है, लोग पाप करते हैं, जुर्माना देते हैं, हाँ प्रायश्चित करते हैं, बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं, लेकिन प्रायश्चित क्या करते हैं, फिर वही पाप को करते हैं। तो यही श्री सुखदेव गोस्वामी यही बात को यहाँ पर कहते हैं, जब तक हमें इस संसार के प्रति आकर्षित होंगे तब तक भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएंगे। ये बात भी जो गोपाल कृष्ण घोष महाराज एक बार बता रहे थे, जब तक संसार के प्रति हमारा आकर्षण है तो फिर हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएंगे, ये बात महाराज भी एक बार बता रहे थे। तो यही बात को भी श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये बात भी सारा शास्त्र कह रहा है। ऐकांतिक हरे रे भक्ति उत्पाद एव केवल, जैसे के गृहस्थ जीवन में आने के बाद कि कोई भी आश्रम में व्यक्ति जैसे विधि विधान का श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना ऐकांतिक हरे रे भक्ति उत्पात एव केवल उत्पाद करेगा, केवल उत्पाद करे विधि विधान को जैसे उड़ेगा केवल उत्पाद ही करेगा। ऐकांतिक हरे रे भक्ति, हरि की भक्ति जैसे वो नहीं अपने जीवन में नहीं अपने आएगा, वो उत्पाद के कारण समाज के संसार के उत्पाद के कारण ही बनेगा। ये बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते अपीश्वर नाम की मुत क्या है जी, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति के ईश्वर नाम जैसे वो श्री से आकर्षित हो जाते हैं तो उनके जीवन में क्या किम उत क्या कहा जाए। ब्राह्मच्य गृह से जब ऐसे पुरुष नेताओं का जीवन इस प्रकार का दुर्दीन ऐसा ग्रस्त है कि ग्राम्य यस्य गृह चेतसा, तो फिर वो लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो गृहस्थ जीवन में पड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों का बातें ऐसा है तो जो लोग गृह गृहस्थ में पड़े हुए हैं वो लोग ग्राम्य उच्च गृह चेतसा, जो लोग भौतिक जीवन में गृह गृहस्थ में अटके हुए हैं पड़े हुए हैं तो वो लोगों के विषय में हमें फिर क्या कहा जाए। हमें सोचते हैं पारिवारिक जीवन की तरह में गृहस्थ जीवन में रह करके हमें सोचते हैं कि मेरा बच्चा बचाएगा, मेरा पत्नी बचाएगा, मेरा परिवार बचाएगा, मेरा कुटुंब बचाएगा, मेरे संबंध में जो है वो लोग बचाएंगे, इस प्रकार का सोच रहा था गजेंद्र। लेकिन इस प्रकार का जो सोच है बहुत डेंजरियस है, बहुत बहुत भयंकर विपद है। इस प्रकार का सोचना मेरा परिवार के लोग बचाएंगे, मेरा पत्नी बचाएगा, मेरा बच्चा बचाएगा, मेरा पुत्र बचाएगा, इस प्रकार का जो सोच है गृहस्थों का बहुत डेंजरियस है, बहुत भयंकर है। ये तो इस प्रकार इसीलिए गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कह दिए मैं माया का ब्रह्मांड में नहीं जाऊंगा, ये माया का जगह में मैं नहीं जाऊंगा। एक बार गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज दृष्टि हीन होने का अभिनय करने लगे, जैसे उनका देख नहीं पा रहे ऐसे दृष्टिहीन होने का अभिनय करने लगे। तो सरस्वती ठाकुर जी उनको चरण में निवेदन किया कि प्रभु आप कलकत्ता जाके आपका चिकित्सा कीजिए। और भक्तिविनोद ठाकुर जी भी गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज को यही बताएं कि आप कलकत्ता जाओ, वहां पर आपका आंखों का चिकित्सा करो। तो उसके जवाब में श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कह पड़े कि ये मैं बिल्कुल भी ये माया का ब्रह्मांड में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल ये माया नगरी में मैं नहीं जाऊंगा। और भक्तिविनोद ठाकुर जी कहें देखो वहां पर सरस्वती ठाकुर जी आपके साथ जाएंगे, आपका कोई असुविधा नहीं होगा, वो आपका सेवा कर सकते हैं। तो ये जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहें तो तुरंत श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रभु जी का सेवा नहीं लूंगा। गौरकिशोरदास बाबा जी कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जब सेवा करने के लिए इच्छा किए तो गौरकिशोरदास बाबा जी कह रहे हैं कि मैं प्रभु का सेवा नहीं लूंगा, हो सके तो मैं जल में डूब करके शरीर छोड़ दूंगा, गंगा में डूबने से भूत बनना पड़ेगा, मैं सरस्वती में डूब करके मर जाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु जी का सेवा नहीं लूंगा। इस तरह कह करके वो स्वानंद सेवा कुंज से निकल करके वो स्वानंद सेवा कुंज के सामने जो सरस्वती नदी बह रही है वो सरस्वती नदी की ओर दौड़ने लगे। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जब दौड़ रहे थे सरस्वती नदी की ओर, उसके पीछे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो भी उनको प्रार्थना करते हुए वो भी दौड़ने लगे। तो अचानक श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज 45 दिन तक अदृश्य हो गए। 45 दिन तक गौर बाबा जी महाराज अदृश्य हो गए। और अचानक 45 दिन के बाद एक बार आकर के सामने उपस्थित हो गए और होकर के कहने लगे हाँ, आत्महत्या करने से कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्महत्या करके कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मैं किसी का सेवा नहीं लूंगा। गुरु किसी बदास बाबा जी महाराज इस प्रकार का वैराग्य जीवन बिता रहे थे, किसी का सेवा नहीं लेना नहीं चाहते थे, तो कह दिए फिर भी मैं किसी का सेवा अंगीकार नहीं करूंगा। हाँ कह दिया। और इस प्रकार का उनका आंखों का इस प्रकार हालत था, करोड़ों चिकित्सा के बाद उनको दवाई कोई भी खिलाया नहीं पाया। और गोकिशोरदास बाबा जी महाराज एकादशी के दिन निर्जला करते थे, एकादशी के अतिरिक्त और दिनों में तो क्या खाते थे, गंगा का मिट्टी खाते थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आहार क्या था, हमें तो कचौरी पूरी स्वीट राइस गुलाब जामुन रसगुल्ले क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या खाते थे, उनका आहार क्या था, भजन भजन था। और भजन का आहार क्या था, ना गंगा का मिट्टी, गंगा का मिट्टी खा के भजन करते थे। और कभी कभी वो सूखे चावल को लेकर के गंगा जल में भिगो देते थे और मिट्टी के साथ उनको मिला करके खाते थे। ये हमारे आचार्यों का वैराग्य है, वो उनका वैराग्य बनावटी नहीं है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार का वैराग्य संसार के सामने स्थापन करके प्रस्तुत करते थे। हाँ, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, जब तक एक पुरुष जब तक एक स्त्री ये दोनों के प्रति आकर्षित रहेंगे, तब तक नरक का दरवाजा वो लोगों के लिए खुल जाएगा। जब तक दोनों, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति, खाली जो पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते ये बात नहीं है, और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होते ये बात भी नहीं है। लेकिन दोनों के प्रति जब आकर्षित होंगे, तब वो दोनों के लिए नरक की दरवाजा खुल जाए। लेकिन दोनों वेदों की विधि विधान के अनुसार यदि जीवन बिताएंगे, तो फिर कृष्ण भावनामृत में वो पहुंच सकते हैं। तो आज की ये श्लोक के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री रामचंद्र जो सीता के प्रति आकर्षित होकर के सीता के वियोग में जिस प्रकार दुखी हुए थे, तो ये संसारी मनुष्य जिस प्रकार का आकर्षित होते हैं ऐसा नहीं है इस प्रकार कह करके, तो ये भी साइड में कह रहे हैं। तो हे देखो, संसार के मनुष्य, संसार में रहना है, भौतिक जीवन में रहना है, गृहस्थ में रहना है, लेकिन बिना आसक्ति के संसार में रहना है, लेकिन संसार हमारे भीतर नहीं रहना है। सांसारिक जीवन बिताना है, गृहस्थ जीवन बिताना है, संसार में रहना है, लेकिन संसार हमारे भीतर नहीं बसना चाहिए। ये बात को श्री सुखदेव गोस्वामी हमें कहना चाहते हैं। ये उपदेश के द्वारा यदि चाहे पुरुष हो कोई भी आश्रम में हो, क्या ब्रह्मचारी लोग क्या आसक्त नहीं होते, क्या ब्रह्मचारी आश्रम में आगे क्या उनके भीतर संसार नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद भी सारा संसार उनके मन के भीतर है। और फिर गौर किशोरदास बाबा जी का महाराज कहते हैं वो कुंड में नहीं है ना, राधा कुंड में नहीं है, वो विष्ठा कुंड में। ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके ब्रह्मचारी यदि अपने जी भीतर संसार को बसाता है, श्रील गुरु किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं वो राधा कुंड में नहीं है, वो विष्ठा कुंड में। तो सावधान होना चाहिए, आचार्य को वाणी यदि कुल्हाड़ी के जैसे हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन कितने इलाज करता है, तो इलाज को जब हमें दवाई को यदि हमें लेंगे, तो निश्चित रूप से हम भक्ति मार्ग में एक शक्तिशाली भक्त बन पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभु बाबा देखी, समय नहीं है तो प्रश्न नहीं जा सकता। हरे कृष्ण। चालू है क्या?
यार बंद कर दो। अभी चालू। हाँ कौन है था? कौन लगा था?
चलो नहीं
अभी चालू।
अरे जाने दोस्त, अपने सो लगा।
दिन सो नहीं।